यीशु मसीह का रहस्य उद्घाटन संख्या 16। सात गरजों का अनावरण, प्रकाशित वाक्य और गुप्त इतिहास का भविष्यवाणी परक विश्लेषण।
हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 11 से 13 में प्रस्तुत सात गर्जनाओं के छिपे हुए इतिहास द्वारा पहचाने गए भविष्य सूचक घटनाक्रम को क्रमवार प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अभी तक इन घटनाओं के विकास में उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम प्रोटेस्टेंटवाद के सींग और गणतंत्रवाद के सींग के इतिहास को एक दूसरे पर रखकर देखेंगे। न ही हमने अभी तक ऐसी समझ का आधार तैयार किया है कि मध्यरात्रि की पुकार के संदेश में इस्लाम की भूमिका को ठीक ठीक चिन्हित कर सके। फिर भी इन घटनाओं से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य है जो ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति उन सत्यों को समझता है जो खोले जा रहे हैं तो उसे क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य का आशीर्वाद उन लिखी हुई बातों को पालने की जिम्मेदारी भी शामिल करता है। जिस इतिहास की मुहरें खुल रही हैं उसकी धारा उन लोगों तक ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति पहुंचा रही है जो उसमें लिखी बातों को सुनते, पढ़ते और उनका पालन करते हैं। इसलिए अब समय है कि हम यशाया के अंतिम भविष्यवाणी पूर्ण आख्यान और प्रकाशित वाक्य के अध्याय 11 से 13 पर अपने विचार विमर्श से हटकर उस 3.5 दिनों के महत्व को स्थापित करें जब एलिया और मूसा मरी हुई सूखी हड्डियों की घाटी से होकर गुजरने वाले सूचना सुपर हाईवे की सड़क पर मृत पड़े थे। अब हम जिसकी पहचान करेंगे वो है मरुभूमि का प्रतीकवाद। पिछले लेख में हमने घटनाओं के उस क्रम के चार भविष्य सूचक साक्षियों की पहचान की थी जो सात गर्जनाओं के गुप्त इतिहास द्वारा स्थापित किया गया है। मसीह की प्रतिमा की रेखा, दो गवाहों की रेखा, पशु की प्रतिमा की रेखा और उत्तर के छद्म राजा की रेखा। उत्तर के नकली राजा की काल रेखा का दूसरा आधा 545 ईस्वी में पापाई सत्ता के सशक्तिकरण से शुरू होता है। तब पापाई सत्ता, जो उत्तर का आध्यात्मिक नकली राजा है, ने 1260 वर्षों तक आध्यात्मिक यरूशलेम और आध्यात्मिक इज़राइल को पद दलित किया।
और वे तलवार की धार से गिरेंगे और सब जातियों में बंदी बनाकर ले जाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो जाए तब तक यरूशलेम अन्य जातियों द्वारा रौंदा जाएगा। लूका 21:24।
यूहन्ना से पवित्र स्थान और सेना दोनों को नापने को कहा गया, पर उसे आंगन को छोड़ देने के लिए भी कहा गया क्योंकि वो 1260 वर्ष तक अन्य जातियों को दे दिया गया था।
और मुझे छड़ी के समान एक सरकंडा दिया गया, और स्वर्गदूत खड़ा होकर बोला, उठ और परमेश्वर के मंदिर को और वेदी को और उसमें उपासना करने वालों को नाप, परंतु जो आंगन मंदिर के बाहर है उसे छोड़ दे और उसे नाप मत, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है। और पवित्र नगर को वे 42 महीने तक पैरों तले रौंदेंगे। प्रकाशित वाक्य 11:1-2।
यूहन्ना और लूका गवाही देते हैं कि अन्य जाति लोग यरूशलम को पैरों तले रौंदते हैं 42 महीनों तक। यूहन्ना अवधि बताता है और लूका इतिहास के समापन को चिह्नित करता है। ये दोनों साक्षी दानियल के अध्याय 8 और पद 13 के प्रश्न को संबोधित कर रहे हैं।
तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, और दूसरे पवित्र जन ने उस बोलने वाले पवित्र जन से कहा, ये दर्शन जो प्रतिदिन के बलिदान और उजाड़ने वाले अधर्म के विषय में है कब तक रहेगा कि पवित्र स्थान और सेना दोनों को पद दलित होने के लिए सौंप दिया जाए? दानियल 8:13।
यह प्रश्न कि पवित्र स्थान और होस्ट को कितने समय तक पैरों तले रौंदा जाना था उन दो उजाड़ने वाली शक्तियों की पहचान करता है जो यरूशलेम को रौंदने का कार्य पूरा करेंगी, जिसे दानिस वेम में सैंक्चुअरी और होस्ट के रूप में दर्शाया गया है। इस पद की सही मूलभूत समझ, जैसा कि एंड्रूज ने व्यक्त की, यह है कि ये पद दो उजाड़ने वाली शक्तियों की पहचान करता है जिन्होंने पवित्र स्थान और होस्ट दोनों को रौंदा। इस पद में पहचानी गई पहली उजाड़ने वाली शक्ति पैगनवाद है और दूसरी पोपवाद। होस्ट शब्द दानिस वेम में घंबर में रूल एंड करता, ये दो ब्रिटिश इम्बास के रूप में पहचानता है।
दानियल 8 में दो विनाश है। ये तथ्य जोसिया शाह लिच ने इतना स्पष्ट कर दिया है कि हम उनके ही शब्द प्रस्तुत करते हैं। दैनिक बलिदान अंग्रेजी पाठ का वर्तमान रूप है, परंतु मूल पाठ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बलिदान कहा जा सके। ये बात सर्वत्र स्वीकार की गई है। ये अनुवादकों द्वारा उस पर थोपा गया एक व्याख्यात्मक जोड़ या निर्माण है। सही पाठ ये है दैनिक और उजाड़ का अतिक्रमण, जहां दैनिक और अतिक्रमण और द्वारा एक साथ जुड़े हैं। दैनिक उजाड़ और उजाड़ का अतिक्रमण, ये दो विध्वंसकारी शक्तियां हैं जिनका कार्य पवित्र स्थान और सेना को उजाड़ना था। भविष्यवाणी संबंधी व्याख्याएं खंड एक पृष्ठ 883। ये स्पष्ट है कि पवित्र स्थान और सेना को नित्य और उजाड़ करने वाले अपराध के द्वारा पैरों तले रौंदा जाना था। पद 13 का सावधानीपूर्वक पठन इस बात को तय कर देता है और ये तथ्य एक और बात स्थापित करता है, अर्थात कि ये दोनों विध्वंस वे दो प्रमुख रूप हैं जिनके द्वारा शैतान ने यहोवा की उपासना और कार्य को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है। इन दो शब्दों के अर्थ के विषय में श्री मिलर की टिप्पणियां और उस अर्थ का निर्धारण करने में स्वयं उनके द्वारा अपनाई गई पद्धति निम्न शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत है। दो विध्वंस मूर्ति पूजा और पाप तत्व है। मैं आगे पढ़ता गया और मुझे कोई अन्य स्थान नहीं मिला जहां ये नित्य पाया गया हो सिवाय दानियेल में। तब मैंने कॉन्कॉर्डेंस की सहायता से वे शब्द लिए जो उसके साथ जुड़े हुए थे। हटा देना, वह हटा देगा, नित्य उस समय से जब नित्य हटाया जाएगा, इत्यादि। मैं आगे पढ़ता गया और सोचा कि मुझे इस पाठ पर कोई प्रकाश नहीं मिलेगा। अंततः मैं 2 थिस्सलुनीकियों 2:7-8 पर पहुंचा। क्योंकि अधर्म का भेद तो अभी से काम कर रहा है, केवल जो अब रोक रहा है वही तब तक रोकेगा जब तक कि वो बीच से हटाया न जाए, और तब वो दुष्ट प्रकट होगा, इत्यादि। और जब मैं उस पद पर पहुंचा, ओह सत्य कितना स्पष्ट और महिमामय प्रतीत हुआ। वही है, वही नित्य है। तो अब पौलुस जो अब रोक रहा है या बाधा डालता है से क्या मतलब लेते हैं? पाप के मनुष्य और दुष्ट से पोपवाद का ही आशय है। तो ऐसा क्या है जो पोपवाद के प्रकट होने में बाधा डालता है? अरे वो तो मूर्ति पूजा है, तो फिर नित्य का अर्थ मूर्ति पूजा ही होना चाहिए। सेकंड एडवेंट मैनुअल पृष्ठ 66। J.N. एंड्रूज, पवित्र स्थान और 23rd दिन 33 चांत्रस।
लैव्य व्यवस्था अध्याय 26 के 7 गुना की पूर्ति में मूर्ति पूजा ने 1260 वर्षों तक पवित्र स्थान और सेना को रौंदा, और फिर पोप सत्ता ने भी अतिरिक्त 1260 वर्षों तक वही कार्य किया। लूका और यूहन्ना के अनुसार पोप सत्ता ने 1798 में घातक घाव प्राप्त करने तक 1260 वर्षों तक यरूशलेम को रौंदा था। 1798 में से 1260 वर्ष घटाने पर 538 प्राप्त होता है। 538 में से 1260 वर्ष घटाने पर 733 ईसा पूर्व प्राप्त होता है, जब असीरिया, जो उस समय उत्तर का वास्तविक राजा था, ने इसराइल के उत्तरी राज्य को दास्ता में ले गया। यूहन्ना केवल उन 1260 वर्षों का उल्लेख करता है जिनमें पापाई सत्ता ने पवित्र स्थान और सेना को रौंदा, परंतु लूका उन दोनों 1260 वर्षीय अवधियों की चर्चा करता है जिनमें मूर्ति पूजा और पोपवाद ने यरूशलेम को रौंदा, क्योंकि वो कहता है जब तक कि अन्य जातियों के समयों की पूर्ति न हो जाए। लूका यरूशलेम के रौंदे जाने को एकमात्र समय से अधिक बताता है, क्योंकि वो इसे अन्य जातियों के समयों की पूर्ति कहता है। निस्संदेह 1856 में मिलराइट एडवेंटवाद लाओदीकियाई अवस्था में आ गया, और 7 वर्ष बाद उन्होंने लैव्य व्यवस्था अध्याय 26 के 7 समय के सत्य को अस्वीकार कर दिया। इसलिए एडवेंटवाद के लिए इन सरल बाइबिलीय तथ्यों को देख पाना असंभव है। मैं जिस तथ्य की ओर संकेत कर रहा हूं वो ये है कि 7 गर्जनाओं का गुप्त इतिहास, जो 3 मार्गचिन्हों की पहचान कराता है और समयावधि ची फिर दूसरे व तीसरे मार्गचिन्ह के बीच दूसरी समयावधि को भी दर्शाता है, उत्तर के नकली राजा की भविष्य सूचक रेखा के भीतर दर्शाया गया है। वो सिलसिला 703 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जब इसराइल का उत्तरी राज्य अशूर के राजा, जो वास्तव में उत्तर का राजा था, के हाथों गुलामी में चला गया। फिर 538 ईस्वी में आध्यात्मिक उत्तर का राजा को शक्ति मिली और उसने अगले 1260 वर्षों तक आध्यात्मिक यरूशलेम को रौंदा, जब तक कि 1089 में उसे एक घातक घाव नहीं लगा। 703 ईसा पूर्व से 538 ईस्वी तक
जो शक्तियां इज़राइल को अधीनता में रखती रहीं, वे हमेशा मूर्ति पूजक शक्तियां थीं।
मसीह की रेखा ये दर्शाती है कि वर्ष 27 में उनके बपतिस्मा के समय सच्चे उत्तर के राजा का अभिषेक हुआ और 1260 भविष्यवाणी के दिन बाद उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। फिर उनके शिष्यों को सच्चे उत्तर के राजा का संदेश प्रस्तुत करने के लिए सशक्त किया गया, वर्ष 34 में स्तेफन पर पत्थर चलाए जाने तक। उनके सेवाकाल के पूरे 1260 दिनों में केवल एक ही समय ऐसा था जब मसीह पैदल नहीं चले, जब वे विजयी प्रवेश में यरूशलेम में सवारी करके आए। अतः उन्होंने 1260 दिनों तक यरूशलेम को रौंदा और क्रूस के बाद उनके शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। दोनों रेखाएं, उत्तर के नकली राजा और मसीह सच्चे उत्तर के राजा, ने 1260 दिनों तक यरूशलेम और सेना को रौंदा।
मूर्ति पूजा वंशगत यहूदियों की पृथ्वीस्थ पवित्र स्थान सेवा की उपासना व्यवस्था की एक नकली नकल थी और पापावाद आत्मिक यहूदियों की स्वर्गीय पवित्र स्थान सेवा की एक नकली नकल है। मूर्ति पूजा के 1260 वर्ष मसीह के 1260 दिनों के समानांतर थे और पापावाद के 1260 वर्ष शिष्यों के 1260 दिनों के समानांतर थे।
दोनों रेखाओं में सात गर्जनों के छिपे इतिहास की एक जैसी भविष्य सूचक संरचना है, जिसका सार्वजनिक उन्मोचन जुलाई 2023 में शुरू हुआ। ये उन्मोचन आंशिक रूप से मिलराइट आंदोलन की पहली निराशा को पहचानने से संभव हुआ। उनकी पहली निराशा ने कालखंड का आरंभ किया, जिसे 10 कुमारियों के दृष्टांत में प्रतीक्षा काल कहा गया है। ये प्रतीक्षा काल एक्सेटर न्यू हैम्पशायर की कैंप मीटिंग में तब समाप्त हुआ जब मध्य रात्रि की पुकार का संदेश पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था। एक्सेटर की वही कैंप मीटिंग दूसरा मार्ग चिन्ह बनी, जिसने फिर एक ऐसे कालखंड का आरंभ किया जिसमें मध्य रात्रि की पुकार का संदेश प्रचारित किया गया, जब तक कि न्याय का तीसरा मार्ग चिन्ह और अंतिम निराशा आ नहीं गए।
तीन मार्ग चिन्ह ये थे: प्रथम निराशा, मध्य रात्रि की पुकार का संदेश और अंतिम निराशा। ये तीनों मार्ग चिन्ह हिब्रू शब्द सत्य से मेल खाते हैं, जो हिब्रू वर्णमाला के प्रथम, 13वें और अंतिम अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है। प्रथम और अंतिम दोनों का निराशा होना अल्फा और ओमेगा के हस्ताक्षर का प्रतिनिधित्व करता है।
मिलराइट इतिहास में 1260 दिनों का कोई प्रत्यक्ष निरूपण नहीं है, फिर भी मिलराइट इतिहास प्रथम आंदोलन का इतिहास है और इसलिए वो अंतिम आंदोलन का प्रतिरूप है। अंतिम आंदोलन में पहली निराशा 18 जुलाई 2020 को आरंभ हुई और उसका चित्रण प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में किया गया है। प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में दो गवाह मार डाले जाते हैं। ये घटना अंतिम आंदोलन में पहली निराशा को चिह्नित करती है, जिसका प्रतिरूप प्रथम आंदोलन था।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में निराशा ने 1260 दिनों की उस अवधि की शुरुआत की जब उनकी लाशें सड़क पर पड़ी थीं, और इस प्रकार दृष्टांत के विलंब के समय को चिह्नित किया। उनके पुनरुत्थान पर उन्हें एक ध्वज के रूप में ऊपर उठाया जाता है, उसी समय जब रविवार के कानून का न्याय होता है। दो साक्षियों का इतिहास 1260 दिनों की एक प्रतीकात्मक अवधि को सम्मिलित करता है।
सात गर्जनाओं के गुप्त इतिहास में तीसरे स्वर्गदूत की गति का विवरण अन्य समांतर रेखाओं की तुलना में कहीं अधिक विशिष्टता प्रदान करता है, परंतु तीसरे स्वर्गदूत की रेखा उत्तर के सच्चे राजा की रेखा और उत्तर के नकली राजा की रेखा, ये सभी समान भविष्यवाणी संबंधी विशेषताएं रखती हैं। एक प्रारंभिक बिंदु, उसके बाद एक समयावधि जो एक मध्य बिंदु तक पहुंचती है, और फिर एक समयावधि जो अंत बिंदु पर न्याय तक पहुंचती है।
1260 दिन सात गर्जनाओं के गुप्त इतिहास का एक प्रमुख तत्व है। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में 1260 दिनों को निर्जन स्थान के रूप में प्रतीकित किया गया है।
और वो स्त्री मरुभूमि में भाग गई, जहां उसके लिए परमेश्वर ने एक स्थान तैयार किया था, ताकि वहां उसका 1260 दिनों तक पालन पोषण किया जाए। प्रकाशित वाक्य 12:12।
कलीसिया मरुभूमि में भाग गई ताकि 1260 वर्षों तक पोप की सत्ता द्वारा पैरों तले रौंदे जाने से बच सके। 14वां पद एक और गवाही देता है।
और उस स्त्री को एक बड़े उकाब के दो पंख दिए गए ताकि वो जंगल में अपने स्थान पर उड़कर चली जाए, जहां वो सर्प के सामने से एक समय और दो समय और आधा समय तक पाली जाती है। प्रकाशित वाक्य 12:14।
कलीसिया अजगर और पोप शाही के उत्पीड़न से 1260 वर्षों तक भागती रही और इसलिए जंगल 1260 दिनों का प्रतीक है। वो संख्या दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों में प्रत्यक्ष रूप से 7 बार आती है, परंतु पवित्र शास्त्र में वो कई अन्य तरीकों से भी व्यक्त की गई है। हर मामले में वो लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 के 7 गुना का प्रतिनिधित्व करती है, चाहे 87 तक ईसा पूर्व से 538 ईस्वी तक मूर्ति पूजा ने पवित्र स्थान और सेना को रौंदा हो, या पापाई सत्ता ने आध्यात्मिक यरूशलेम और उसके उपासकों को रौंदा हो। ये परमेश्वर की प्रजा के तितर बितर होने का एक चित्रण था, जो लेव्य व्यवस्था के अध्याय 25 और 26 में दर्शाई गई भूमि के सप्तों की वाचा को परमेश्वर की प्रजा द्वारा तोड़ने के कारण हुआ। अध्याय 26 में इसे परमेश्वर की वाचा का विवाद कहा गया है।
और मैं तुम पर तलवार ले आऊंगा जो मेरी वाचा के विवाद का प्रतिशोध करेगी, और जब तुम अपने नगरों के भीतर इकट्ठे होगे, तब मैं तुम्हारे बीच महामारी भेजूंगा और तुम शत्रु के हाथ में सौंपे जाओगे। लव्य व्यवस्था 26:25।
परमेश्वर की वाचा के विरुद्ध विद्रोह ने परमेश्वर की प्रजा पर वो गुलामी और तितर बितर होना ला दिया, जिसे मेरी वाचा का झगड़ा के रूप में दर्शाया गया है। उस दंड को समझे बिना जिसे दानियल मूसा का शाप और शपथ कहता है, और जिसे मेरी वाचा का झगड़ा भी कहा जाता है, कोई व्यक्ति दानियल अध्याय 9 में प्रस्तुत मसीह के कार्य के गहरे नजर विश्वाय को नहीं देख पाता। एलन वाइट की रचनाओं में लाओदिकिया की अंधता में पड़ी परमेश्वर की प्रजा के बारे में एक सुसंगत मूल्यांकन ये है कि वे कारण से परिणाम तक तर्क नहीं कर सकते। आप ये दावा कर सकते हैं कि आप अंधकार युग के 1260 वर्षों को समझते हैं, परंतु यदि आप उस रौंदे जाने का कारण नहीं जानते तो आप अंधे हैं।
और वो एक सप्ताह के लिए बहुतों के साथ वाचा को दृढ़ करेगा, और सप्ताह के मध्य में वो बलि और अर्पण को समाप्त कर देगा, और घृणित बातों के फैलाव के कारण वो उसे उजाड़ डालेगा जब तक अंत न हो जाए, और जो ठहराया गया है वो उस उजाड़े हुए पर उंडेला जाएगा। दानियल 9:27।
मसीह द्वारा वाचा की पुष्टि उसकी वाचा के विवाद से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। शाप की अवधि 2520 वर्ष थी, और उसी वाचा की मसीह द्वारा की गई पुष्टि की अवधि 2520 दिन थी। इब्रानी शब्द सत्य के अनुरूप, जो 7 गर्जनाओं के गुप्त इतिहास की संरचना प्रदान करता है, वो भविष्यवाणी का सप्ताह जिसमें मसीह को अपनी वाचा की पुष्टि करनी थी, 3 मील के पत्थरों से युक्त था, जो इब्रानी वर्णमाला के प्रथम, 13वें और अंतिम अक्षरों द्वारा दर्शाए जाते हैं। सप्ताह का पहला मार्चिन उनका बपतिस्मा था, दूसरा मार्चिन क्रूस था, और अंतिम स्टेफनुस की मृत्यु थी। लेव्य व्यवस्था 26 के 7 गुना को देखने से इनकार करना, जैसे स्वर्गदूतों ने विलियम मिलर का मार्गदर्शन किया था कि वे 7 गुना देखें, उस भविष्यवाणी को पूरी तरह देखने की क्षमता ही समाप्त कर देता है जिसमें मसीहा ने अपना लहू बहाया और उसी वाचा की पुष्टि की जिसे उनकी शाब्दिक प्राचीन प्रजा ने अस्वीकार कर दिया था। अंततः जो भी उद्धार पाएगा उसके पास सत्य की समझ केवल आंशिक और अपूर्ण होगी, पर कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर सत्य को देखने से इनकार करता है उद्धार नहीं पाता। पिता तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, और वो यीशु के द्वारा है, और यीशु ही सत्य है। इस पर विचार करना सार्थक है, क्योंकि ये लेव व्यवस्था अध्याय 25 और 26 की वाचा की बात करती है। 7 गुना का शाप प्राचीन शाब्दिक इसराइल पर इसलिए आया क्योंकि भूमि को विश्राम देने और जुबली संबंधी आज्ञाओं का पालन करने के निर्देशों को लागू करने में वे अनिच्छुक थे। ये उपेक्षा का पाप था। उन पर ये शाप इसलिए आया क्योंकि उन्होंने वो काम छोड़ दिया था जिसे करने की उन्हें आज्ञा दी गई थी, न कि इसलिए कि उन्होंने किसी आज्ञा को सीधे तोड़ा था, जैसे तू हत्या न करना या तू चोरी न करना। उन्होंने बस उन निर्देशों की अनदेखी की जो भूमि को विश्राम देने से संबंधित थे।
जो एडवेंटिस्ट किसी भी अपवित्र कारण से सात गुना को, जिसकी खोज के लिए स्वर्गदूतों ने विलियम मिलर का मार्गदर्शन किया, नहीं मानते। उन्होंने बस कभी सचमुच सत्य की पड़ताल करने के लिए समय ही नहीं निकाला है। और प्राचीन शाब्दिक इसराइल ने जिस उसी वाचा संबंधी जानकारी की अनदेखी की थी, उसी की उपेक्षा करके वे भी उपेक्षा के उसी प्रकार के विद्रोह को अंजाम दे रहे हैं। आरंभ अंत को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य ने चन दार में निर्जन स्थान के रूप में पहचाने गए 1260 दिन सात काल का प्रतीक है। मसीह की सेवकाई के 1260 दिन और शिष्यों की सेवकाई के 1260 दिन दोनों उस संपूर्ण सप्ताह का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें वाचा की पुष्टि हो रही थी। जितने 1260 वर्षों तक मूर्ति पूजावाद ने परमेश्वर के लोगों को रौंदा और जितने 1260 वर्षों तक पोप तंत्र ने परमेश्वर के लोगों को रौंदा, वे दोनों मिलकर मूसा के शाप के संपूर्ण सात काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 में 1260 दिनों के बाद मरी हुई हड्डियों को फिर से जीवन दिया जाता है ताकि वे 144,000 के रूप में वाचा में प्रवेश करें। परंतु उस वाचा के संबंध को पूरा करने के लिए उनके लिए यह आवश्यक है कि वे वाचा की शर्तों को पूरा करें, जैसे दानियल ने 9वें अध्याय में किया था। सात काल की वाचा की शर्तों में उन लोगों के लिए विशिष्ट निर्देश हैं जो अपने को शत्रु की भूमि में पाते हैं। जब जो लोग इस वास्तविकता के प्रति जागते हैं कि वे बिखेर दिए गए हैं और प्रभु के पास लौटना चाहते हैं, तो लेवीय व्यवस्था 26 ये निर्देश देती है कि उन्हें कैसे लौटना है।
और तुम में से जो बचे रहेंगे, वे अपने शत्रुओं के देशों में अपने अधर्म के कारण घुलते रहेंगे और अपने पितरों के अधर्म के कारण भी वे उनके साथ घुलते रहेंगे। यदि वे अपने अधर्म और अपने पितरों के अधर्म को उस अपराध सहित जिसके द्वारा उन्होंने मेरे विरुद्ध अपराध किया है, और ये भी कि वे मेरे विरोध में चलते रहे हैं, स्वीकार करें, और ये भी कि मैं भी उनके विरोध में चला हूँ और उन्हें उनके शत्रुओं के देश में ले आया हूँ, तो यदि तब उनके खतना रहित हृदय नम्र हो जाएं और तब वे अपने अधर्म के दंड को स्वीकार करें, तब मैं याकूब के साथ की अपनी वाचा को स्मरण करूँगा और इसहाक के साथ की अपनी वाचा को भी और इब्राहिम के साथ की अपनी वाचा को भी स्मरण करूँगा और मैं उस देश को स्मरण करूँगा। लेव व्यवस्था 26:45।
धर्म ग्रंथों में फाइन अवे अभिव्यक्ति का अर्थ है घुल जाना, सड़ गल जाना और पूरी तरह समाप्त हो जाना। फाइन अवे का मतलब है क्षीण होते होते मृत, सूखी हड्डियों में बदल जाना। और ये निर्देश मृत्यु की ओर संकेत करता है, क्योंकि ये उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी अवस्था के प्रति जाग कर समझते हैं कि वे अपने शत्रुओं की भूमि में हैं।
नाश किया जाने वाला अंतिम शत्रु मृत्यु है। 1 कुरिन्थियों 15:26।
18 जुलाई 2000 ईस्वी को तीसरे स्वर दूत के आंदोलन में पहली निराशा घटी। पवित्र भविष्यवाणी संबंधी सुधार रेखाओं में अन्य सभी पहली निराशाओं में उसकी मिसाल मिलती है। हेजकेल अध्याय 37 के अनुसार अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा इतनी घुल बिखर भ्रष्ट और नष्ट हो चुकी होगी कि वे केवल मृत सूखी हड्डियों की एक घाटी मात्र रह जाएंगी। वे शत्रु की भूमि में है जो मृत्यु की भूमि है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में दो गवाहों को मार डाला गया और उन्हें सड़कर छोड़ दिया गया। सभी भविष्यद्वक्ता एक दूसरे से सहमत हैं। अतः मूसा उन लोगों से बोल रहे हैं जो यहेजकेल की घाटी से होकर गुजरने वाली सड़क पर मृत पड़े हैं। अपनी निराश अवस्था में उन्हें यिर्मयाह के माध्यम से निर्देश दिए जाते हैं।
इसलिए प्रभु यूं कहता है, यदि तू लौट आए तो मैं तुझे फिर से लाऊंगा और तू मेरे सामने खड़ा होगा, और यदि तू निकृष्ट में से बहुमूल्य को अलग करे तो तू मेरे मुख के समान होगा। वे ते की ओर लौटें पर तू उनकी ओर न लौटना। यिर्मयाह 15:19।
यिर्मयाह को बताया गया है कि यदि वो परमेश्वर की ओर से बोलना चाहता है तो उसे लौटना होगा और ऐसा करते हुए उसे अनमोल को निकृष्ट से अलग करना होगा। उस खंड का संदर्भ स्पष्ट करता है कि निकृष्ट वे लोग हैं जिनके पास उसे वापस नहीं जाना है। जब उस खंड में उसे उसकी निराश अवस्था में चित्रित किया गया है, वो बताता है कि वो अकेला था।
मैं हंसी उड़ाने वालों की सभा में नहीं बैठा
और ना मैं आनंदित हुआ। तेरे हाथ के कारण मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे रोष से भर दिया है। यिर्मयाह 15:17।
यिर्मयाह उपहास करने वालों की सभा में नहीं बैठा था, क्योंकि वो अकेला बैठा था। उसे उन घृणित लोगों के पास नहीं लौटना था जो उपहास करने वालों की सभा है। 1863 में एडवेंटवाद ने उपहास करने वालों की सभा की ओर लौटना तब शुरू किया जब उसने मूसा के 7 बार को अस्वीकार करने के लिए बाबुल की पुत्रियों की बाइबलीय पद्धति अपना ली। परंतु यिर्मयाह मिलराइट इतिहास की अपेक्षा अधिक विशिष्ट रूप से अंतिम दिनों के विषय में बोल रहा है, जब मृत हड्डियों की घाटी के लोग ये समझकर जाग उठते हैं कि वे शत्रुओं की भूमि में हैं, तब उन्हें उन लोगों के पास कभी नहीं लौटना चाहिए जिन्होंने सड़क पर उनकी मृत्यु पर खुशियां मनाई। वो समूह यिर्मयाह के पास लौट सकता है, पर वो उनके पास नहीं लौट सकता।
परंतु यदि उन्हें लौटना है तो उन्हें मूसा द्वारा दिए गए उन निर्देशों को भी पूरा करना होगा जो 7 समय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में सड़क पर मृत बताए गए लोग 3.5 दिन तक मृत रहते हैं, जो भविष्यवाणी की दृष्टि से मरुभूमि है। इसीलिए मृतकों का प्रारंभिक जागरण एक ऐसे संदेश से संपन्न होता है जो हड्डियों को आपस में जोड़ देता है, लेकिन वे अभी जीवित नहीं होते। उन्हें एक शक्तिशाली सेना में बदलने के लिए चारों पवनों का संदेश, जो मुहर लगाने वाला संदेश है, आवश्यक होता है। उन्हें एक साथ लाने वाला पहला संदेश एक आवाज से आता है।
सांत्वना दो मेरी प्रजा को, तुम्हारा परमेश्वर कहता है। यरूशलेम से सांत्वना के शब्द बोलो और उससे पुकार कर कहो कि उसकी कठिन सेवा समाप्त हो गई है, उसका अधर्म क्षमा किया गया है, क्योंकि उसने अपने सब पापों के लिए प्रभु के हाथ से दोगुना दंड पाया है। मरुभूमि में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो। मरुभूमि में हमारे परमेश्वर के लिए एक राजमार्ग सीधा करो। हर घाटी ऊंची की जाएगी और हर पर्वत और टीला नीचा किया जाएगा। टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे किए जाएंगे और उबड़ खाबड़ स्थान समतल किए जाएंगे। यशाया 40:1-4।
आवाज मरुभूमि से आती है जो 7 समय के विखाव का प्रतीक है। वो आवाज मरुभूमि में ही है, क्योंकि यहेजकेल को भी मृत हड्डियों की घाटी में ले जाया गया था। वो उसी घाटी से गवाही दे रहा था, दूर से नहीं।
प्रभु का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे प्रभु की आत्मा में बाहर ले जाकर उस घाटी के बीच में बैठा दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। यहेजकेला 37:1।
घाटी 3 दिन और आधे की मरुभूमि है। उस आवाज का वचन ये है कि यरूशलेम का अधर्म क्षमा किया गया है और उसकी लड़ाई समाप्त हो गई है। ये वचन अंतिम दिनों में पूर्ण होने वाले 1,44,000 की मोहरबंदी का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु उसके अधर्म की क्षमा उसके सारे पापों के लिए दोगुना प्राप्त करने के साथ जुड़ी हुई है। मूसा द्वारा प्रस्तुत उपाय ये मांग करता है कि वे न केवल अपने अधर्मों की बल्कि अपने पितरों के अधर्मों की भी स्वीकारोक्ति करें। यदि वे उस आज्ञा को पूरा करेंगे तो उनका अधर्म क्षमा कर दिया जाएगा।
हम इन सत्यों को अगले लेख में जारी रखेंगे।
हाँ, समस्त इसराइल ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है, यहां तक कि उससे हटकर, ताकि वे तेरी वाणी का पालन न करें। इसलिए शाप हम पर उंडेला गया है, और वो शपथ भी जो परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी है, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है, और उसने अपने वचनों की पुष्टि कर दी जो उसने हमारे विरुद्ध और हमारे उन न्यायियों के विरुद्ध जो हमारा न्याय करते थे कहे थे, हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति लाकर। क्योंकि समस्त आकाश के नीचे जितना यरूशलेम पर किया गया है वैसा कहीं नहीं किया गया, जैसा कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है। ये सारा अनर्थ हम पर आ पड़ा है, फिर भी हमने अपने प्रभु परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना नहीं की कि हम अपनी अधर्मताओं से फिरें और तेरी सच्चाई को समझें। दानियेल 9:13।